ओम शांति। कल हम सब ने अव्यक्त बाप दादा की मिलन मुलाकात और मुलाकात के साथ साथ बाप दादा के अनमोल महावाक्य भी सुने। ये हम सबका सौभाग्य है कि परमात्मा परमपिता परमात्मा को साकार रूप में हम बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए हुए देखना है। ये बहुत बड़ी भारी आध्यात्मिक क्षेत्र में उपलब्धि है। भक्ति मार्ग में तो हम जानते थे परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, परमात्मा का ये हुआ, परमात्मा का ये हुआ, परमात्मा के द्वारा भक्ति के फल के रूप में वरदान मिलते हैं। दुनिया के अंदर वरदान शब्द थोड़ा क्या कहे उसका नेगेटिव अर्थ ज्यादा हो जाता है, कारण कि जितने भी बड़े बड़े राक्षस महारथी राक्षस हो गए, जैसे रावण है, हिरण्यकश्यप है आदि आदि, जो भी आप जानते हैं भक्ति मार्ग का आप सबको अनुभव है, इन सब ने बहुत ही तपश्चर्या किया और बहुत ही तपश्चर्या कर करके परमात्मा से वरदान लिया। और फिर क्या हुआ, उसी वरदानों का उपयोग ठीक से नहीं किया। जैसे हिरण्यकश्यप है, उसने वरदान लिया कि न मैं घर में मरूं, न मैं बाहर मरूं, न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं, न मैं पशु से मरूं, ऐसी ऐसी जो है बात, मैं हवा में न मरूं, न जमीन पर मरूं, इस प्रकार के अनेक प्रकार की बातों के आधार पर कारोबार हुआ। आप जानते हैं हिरण्यकश्यप का, रावण का, ऐसे ऐसे बहुतों का है, इस समाचार सुनते ही रहते थे। इसलिए भक्ति मार्ग में थोड़ा हम लोगों को डर था। तो कल बाबा ने क्या कह दिया, हम बाप के सबके मतलब तीन प्रकार के वरदान सबको मिले हुए हैं, वो सारी बातें आप जानते हैं। इसलिए मैं मुझे ये ड्यूटी मिली हुई है कि कल की मुरली को रिवाइज कर करके उसकी जो सेलियंट पॉइंट्स है उसके बारे में आप सबसे बात करने का। मैंने नोट किया हुआ है, टाइमिंग में हमेशा ही नोट करता हूँ और सबको अच्छा भी लगता है। 7:23 पर गुलजार दादी स्टेज पर आए, 7:25 योग का गीत बजा, 7:29 पर गुलजार दादी बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन में पहुंच गई, 7:33 अर्थात 4 मिनट के बाद अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई और फिर बाबा ने दृष्टि देना शुरू किया, 7:42 को बाबा ने अव्यक्त मुरली शुरू की। जो मुरली का जो ऑपरेटिव पार्ट जो है वो 8:27 तक बाबा ने मुरली चलाई, अर्थात 7:42 से 8:27 इस प्रकार से एग्जैक्टली 45 मिनट बाबा ने मुरली चलाई। उसके बाद बाबा ने सेवा का टर्न किसका है उसके बारे में बात किया। कल की मुरली इस प्रकार से देखा जाए तो वन ऑफ द शॉर्टेस्ट मुरली, 45 मिनट्स के अंदर बाबा ने जो भी काम करना था, जो भी कहना था, जो भी हम बच्चों को संदेश देना था, जो बाबा की चाहना हम बच्चों से, वो सारी बातें बताई। और 8:27 से 9:37 जो है बाबा ने कर्नाटक जोन से मुलाकात की, वैसे 8:37 से बाबा ने ये डबल विदेशियों से बात किया, फिर और भी कई बातें किया, फिर कुंभ मेले के बारे में बताया और इस प्रकार से 9 बजे तक बाबा मुरली चलाते रहे या मिलते रहे। 9 बजे से स्टेज का कारोबार शुरू हुआ, दादियों से मिले, बाबा को भोग स्वीकार कराया गया, ब्रिजमोहन भाई से मिले, निर्मल भाई से मिले, मुझे भी मिले और फिर बनारसी भाई से भी मिले और उसके बाद बाबा ने विदाई लिया। 9:32 पर बाबा विदाई लेकर के हम बच्चों को हाँ मिल करके गए, मतलब हम गिनती करें तो 9:33 तो बाबा आए और 7:33 को आए और 9:32 को, अर्थात 2 घंटा करीब अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों के साथ में थे। ये बहुत बड़ी बात होती है। आज के जमाने में बाबा ने ये सब शॉर्ट कर दिया, बाकी पहले तो बाबा बहुत लंबे समय तक आते थे। मुझे याद है ऊपर ओम शांति भवन के अंदर बाबा की एक बार एक पधरामणी हुई थी, बाबा को सुखधाम का भी उद्घाटन करना था, तो शाम को 7:30 बजे आए हुए थे, दूसरे दिन सुबह 9 बजे गए, मतलब 12 घंटे हम बच्चों के साथ में रहे। ऐसे बहुत बार होता हुआ है, परंतु अभी बाबा ने अपना कार्य बहुत कम समय में और ज्यादा काम करने के लिए कहा हुआ है, क्योंकि ज्ञान तो जो देना था वो बाबा ने बहुत करके सब दे दिया। अब ज्ञान का फल स्वरूप क्या करना चाहिए, क्या कराना चाहते हैं बाबा, वो हम बच्चों को कहते रहते हैं। और कल बाबा ने क्या कहा, हर एक बच्चों को चाहे सन्मुख है चाहे दूर है, जब बाबा ने सन्मुख या दूर की बात की तब मुझे साकार बाबा की एक मुरली याद आई, जिसमें बाबा ने कहा कि मैं जो मुरली चलाता हूँ, मेरे सामने वर्तमान में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो, और भविष्य में जो बच्चे बैठने वाले हैं, सुनने वाले हैं, ये सब मेरे सामने है, मैं उनके सामने मुरली चलाता हूँ। तब उस टाइम पर हम सोच नहीं सकते थे कि ये बाबा भविष्य के बच्चों को साकार मुरली के रूप में कैसे सिखाते हैं, क्यों बताते हैं, परंतु इसका अर्थ अभी मालूम पड़ता है कि वो साकार मुरलियां जो है वो रिपीट हो रही है। उस जमाने में जो बाबा ने मुरलियां चलाई वो मुरलियां साकार में उस समय पर जो थे वो थे। हमारे में से यहाँ मैं नहीं समझता हूँ कोई, बहुत कम भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने साकार मुरली साकार ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा सुनी हुई थी। तो इस प्रकार से ऐसा कारोबार जो होता था, तो इसलिए बाबा कई बातें ऐसा भविष्य का इशारा दे देते हैं। अभी भी कल जिसे कहा, चाहे सन्मुख है चाहे दूर है, इस प्रकार की बात बाबा ने कही हुई है, क्योंकि आज का विज्ञान के साधनों के द्वारा कई जगह पर, बहुत करके समझता हूँ भारत के 99% सेवा केंद्रों के ऊपर या स्थानों के ऊपर, चाहे विदेश में चाहे देश में, अव्यक्त बाप दादा को सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसके आधार पर बाबा मिलन का कारोबार करते ही रहते हैं। फिर भी बाबा को पिछली साकार अव्यक्त मुरली जो आपने पिछले रविवार को सुनी हुई होगी, उसमें बाबा ने कहा वहाँ घर में बैठ करके जो मुरली सुनते हैं, सेवा केंद्रों पर सुनते हैं, वो अलग है, और यहाँ आकर के यहाँ का वायुमंडल आदि जो भी है उसका लाभ लेकर के जो कार्य करना है वो अलग है। इस प्रकार से टेलीविजन आदि के द्वारा सन्मुख में न होते हुए भी सुन सकते हैं, वो अलग बात है, परंतु प्राप्ति के रूप में सबसे ज्यादा में ज्यादा श्रेष्ठ कारोबार तो जो यहाँ शान में सुनते हैं वो ही है। साकार बाबा की भी एक मुरली है, क्योंकि बाबा के जमाने में, साकार बाबा के जमाने में टेप रिकॉर्डर हो गया था, तो बाबा ने उसमें एक मुरली में कहा था कि सर्वश्रेष्ठ बात तो जो सन्मुख में मुरली सुनना है, उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है, उस जमाने में टेलीविजन आदि नहीं था और या टेलीविजन पर मुरली भी नहीं सुनाई जाती थी, दूसरे नंबर पर जो टेप रिकॉर्डर के द्वारा मुरलियां जाती थी वो है, तीसरी जो है लिथो होकर के जाती थी मुरली। उस प्रकार से समय समय की बात है, समय के साथ साथ परिवर्तन जो होता रहता है उसको अव्यक्त बाप दादा साकार बाप दादा दोनों ने उसको इस प्रकार से अपनाया हुआ है। तो ये भी बाबा से सीखने का है कि हमें भी परिवर्तन की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, ऐसा नहीं जड़ता के आधार पर रहे, जड़ता के आधार पर रहेंगे हम, बाबा वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि बाबा कहते हैं कि संसार जो है, ये सृष्टि जो है और ये यज्ञ भी जो है वो बहता रहता है। संसार शब्द की संस्कृत में डेफिनेशन है सरती संसार, जो बहता रहता है, स्थिर नहीं होता है, जैसे नदी का पानी जो होता है वो बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। गंगा नदी का पानी हिमालय से वहां से निकलता है गंगा नदी के रूप में, फिर गंगा जमुना के मध्य में आता है और फिर समुद्र में जाकर के मिलता है, उस प्रकार से बहता ही रहता है। इस प्रकार से यह यज्ञ जो भी है वो कारोबार इसका होता ही रहता है, और इसलिए ही दादी जानकी को बहुत वो पसंद है। हमारे जो पूर्वज हो गए हैं, दादी प्रकाशमणि मम्मा आदि आदि जो भी है पूर्वजों के करीब 25-30 लोगों के जो पूर्वजों का चित्र है वो दादी जानकी को बहुत पसंद है, क्योंकि इन्हों के पवित्र पुरुषार्थ के आधार पर यज्ञ ने ये 75 वर्ष की यात्रा तय कर करके अब आगे हम बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से बाबा के सामने जो जो है सन्मुख में चाहे दूर है, और बाबा ने क्या कहा कि बाबा ने देखा कि हर बच्चा स्नेह को देख हर्षित, बाप दादा भी हर बच्चे के स्नेह को देख करके हर्षित हो रहे हैं और हर एक बच्चे का चेहरा स्नेह में समाया हुआ है। बाबा ने 3 बात देखी, हम बच्चों को देख लवनीन, बच्चों को देख स्नेह में समाये हुए, बच्चों को देख खुश हो रहे हैं, और बाबा ने 3 वरदान देखे। 3 वरदान में बाप के रूप में पहला वरदान जो है वर्षे का वरदान, ये शिव बाबा से वर्षे का वरदान यह विश्वविद्यालय में ही मिल सकता है और किधर भी नहीं मिल सकता है। क्यों? कि परमात्मा के साथ पिता के रूप में बाप के रूप में संबंध यहाँ ही मिल सकते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधुस्य सखा तमेव, वो सब गाते हैं, परंतु वहां पर उस माँ और बाप के रूप में सखा के रूप में ये सब बातों का अनुभव नहीं होता है। परमात्मा के घर में ही परमात्मा से बाप का अनुभव होता है, और जहाँ बाप का अनुभव होता है वहां पर उनसे वर्षा भी मिलता है। आप सब यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हुए सबको मालूम है, आप सबको अपने लौकिक माता पिता से वरदान कहो वर्षा कहो मिला हुआ ही है, और ऐसे ही आपके द्वारा भी आपके ही जो भी बच्चे आदि जो भी होंगे उसको वर्षा मिलता ही रहेगा। ये एक वर्षे का चक्र जो है वो घूमता ही रहता है, फिरता ही रहता है। तो ये भी बाप से भी वरदान के रूप में वर्षा हम बच्चों को मिल रहा है। ये यह विश्वविद्यालय की ये खूबी है, ये दुनिया में किधर भी यह वर्षा वर्षे के रूप में वरदान अर्थात भविष्य, क्योंकि आप जानते हैं शिव बाबा सतयुग त्रेता युग में नहीं आ सकते हैं, वो हम बच्चों को तैयार कर करके हमको राजभाग आगे का दे देते हैं। इस प्रकार से वर्षे के रूप में यह विश्वविद्यालय में ही प्राप्ति हो सकती है। दूसरा बाबा ने कहा है शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा का वरदान, श्रेष्ठ ज्ञान। इतना दुनिया में ज्ञान होते हुए भी क्या होता है, जो बाबा चाहते हैं श्रेष्ठ में श्रेष्ठ ज्ञान जो है वो दुनिया में किधर भी नहीं मिलता है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की बातें होती है, अनेक प्रकार की बातें सिखाई जाती है, परंतु जो मूलभूत जो है फंडामेंटल्स जो है ज्ञान का जो फंडामेंटल जो है वो नहीं सिखाया जाता है। और तीसरा जो है गुरु के रूप में वरदानों का भी वरदान, इस प्रकार से 3 वरदान की बाबा ने बात कही है। हम सबको मालूम है ये 3 वरदान हमको अभी संगम युग में ही मिल सकते हैं। दूसरी बात मैंने पिछली मुरली में भी बताया था कि बाबा 18 जनवरी की मुरली में बाप दादा कई बार बाप दादा बोलते थे, तब बाप दादा के रूप में बाबा और साकार बाबा अव्यक्त रूप में जो है दोनों को मिक्स कर करके बाप दादा बोलते थे, और कई बार बाप अकेले ही बात करते थे, क्योंकि कई बातों का ऑथोरिटी को हो वो बाप के पास ही है, परमात्मा के पास है वो, पर ब्रह्मा बाबा के पास वो अथॉरिटी नहीं है। जैसे कल बाबा ने कहा, पहले ही कहा, बाप भी बच्चों के स्नेह में लीन है, बाप भी बच्चों के स्नेह में लीन है, हर और यह स्नेह हर बच्चे का लव को लीन लीन का अनुभव करा रहे हैं, और यह स्नेह अशरीरी बना रहे। यहाँ पर भी बाबा ने बाप की बात कही है, बाप दादा की बात नहीं कही है। इस प्रकार से आगे भी जो है कहा इस समय इस संगम समय पर परमात्म बाप द्वारा वरदान मिलते हैं। आप इस सारी बातें नोट करने जैसी है, दोनों के कर्तव्य में क्या भेद है वो मालूम होना चाहिए, परमात्मा का क्या कर्तव्य है और अव्यक्त बाप अव्यक्त बाबा अर्थात साकार ब्रह्मा बाबा जो अव्यक्त हो गए है उनके कर्तव्य में क्या भेद है, वो भेद को हमेशा ही समझना होगा। क्योंकि बाबा ने कहा परमात्म बाप द्वारा, वहां पर ये नहीं कहा परमात्म बाप द्वारा, ये नहीं कहा परमात्म बाप द्वारा वरदान मिलते हैं, वरदाता बाप हर बच्चे को वरदानों से झोली भर देते हैं और एक जन्म में अनेक जन्मों का भविष्य बना सकते हो। तो ये बाप और दादा, इन दोनों के कर्तव्यों को समझना पड़ेगा। जब तक वो नहीं समझेंगे ना तो क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएंगी, गलती हो जाएंगी कि ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सूक्ष्म भाई भेद है परमात्मा का कर्तव्यों में और अव्यक्त ब्रह्मा बाप के कर्तव्यों में क्या भेद है, वो भेद समझना पड़ेगा। और जो उसको समझेगा वो उसके आधार पर अपना पुरुषार्थ को सार्थक कर सकेगा। दूसरी कल बात बाबा ने लवलीन शब्द, जिसे पिछले रविवार को अव्यक्त मुरली चली थी, उसके अंदर क्या आप जानते हैं कौन सा एक शब्द को रिपीट किया हुआ था, 32 बार रिपीट किया हुआ था बाबा ने। आपको मालूम होगा बाबा ने वो 32 बार रिपीट किया। इस प्रकार से कल बाबा ने लवलीन शब्द अपने नोट किया हुआ होगा, लवलीन शब्द 7 बार रिपीट किया हुआ है, 7 बार रिपीट किया हुआ है। कईयों को लगता है कि बाबा ये रिपीट क्यों करता है, मतलब वास्तव में ये रिपीटिशन नहीं है। हमारे पास एक भाई एक बार आया था, कहने लगा कि बाबा के मुरलियों में तो रिपीटिशन है। मैंने कहा नहीं भाई, ये रिपीटिशन नहीं है। तो कहा क्या है, मैंने कहा हमारे एक इनकम टैक्स का एक बहुत बड़ा वकील जो है वो आर्ग्यूमेंट करता था तो घड़ी घड़ी रिपीट करता था। तो मैंने उस बड़े इनकम टैक्स वकील को पूछा कि आप ये घड़ी घड़ी क्यों रिपीट करते रहते हो, तो उसने मुझे बहुत अच्छी बात कही। तब से मैं भी समझ गया हाँ कि बाबा भी वही काम करते हैं। उसने कहा कि मैं रिपीट नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा आप क्या करते हो, तो उसने कहा मैं हैमरिंग करता हूँ, हैमरिंग करता हूँ। मैंने कहा हैमरिंग का क्या अर्थ होता है, किसको हैमरिंग कहते हैं, आप सब जानते हैं ना अंग्रेजी शब्द है हैमरिंग। तो उसने कहा कि दीवार जो होती है, दीवार में एक कील ठोकना होता है, दीवार में एक कील ठोकना होता है तो क्या होता है, एक बार हथौड़ा जो है लगा दिया तो कील चला जाएगा क्या, होता 10-15-25 बार लगाना पड़ता है, जस्ट 10-15-20-25 बार लगाने के इसके बाद ही कील जो है वो दीवार के अंदर जा सकता है। तो उसको क्या कहते हैं, रिपीटेशन नहीं कहते हैं परंतु क्या कहते हैं, हैमरिंग करते रहते हैं। हैमरिंग के आधार पर क्या होता है कि वो बात हमारे मन में हमारे दिल में जैसे दीवार के अंदर कील फिक्स हो जाता है, इस प्रकार से बाबा की बात हमारे दिल के अंदर फिक्स हो जाए और इसीलिए बाबा को हैमरिंग करना पड़ता है, रिपीटेशन नहीं। इसलिए हमारे कई बहन भाई जो समझते हैं कि ये मुरलियां रिपीटेशन होती है उसका ये अर्थ नहीं है। आप ये समझो बाबा हैमरिंग कर करके हमारे दिल दिमाग के अंदर संस्कार रूपी संस्कार द्वारा और संस्कार के कर्तव्यों के द्वारा हमारे में ये ज्ञान फिक्स कर रहे हैं ताकि ये ज्ञान संस्कार रूप बन करके हमारे जीवन के अंदर आ जाए, हमारे मन बुद्धि संस्कार के अंदर वो आ जाए और ये संस्कार के रूप में हमको 2500 वर्ष सतयुग त्रेता के 21 जन्मों के लिए काम में आ जाए। इसीलिए बाबा को ये करना पड़ता है। इसलिए ये हैमरिंग शब्द है, रिपीटेशन नहीं है। कल 7 बार बाबा ने लवलीन लवलीन कहा और 4-5 बार मन जीत जगत जीत की बात कही। इसलिए ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए। अगर उस ज्ञान की गहराई में नहीं जाएंगे तो उसके ऊपर ऊपर में क्या बातें सुनते रहेंगे, तो क्या है ज्ञान की जो खूबी जो है, ज्ञान की जो ताकत जो शक्ति जो ज्ञान से मिलनी चाहिए वो हमारे में नहीं आएंगी। इसलिए इस बात को हमेशा ही ध्यान रखिए कि परमात्मा बाप हैमरिंग करता है, रिपीटेशन नहीं करता है, ताकि हमारे जीवन के अंदर वो ज्ञान की बातें पक्की हो जावे। बाबा ने फिर क्या कहा, यह परमात्मा स्नेह हरेक को परमात्मा प्यार में समाने वाला है। और फिर बाबा हम बच्चों को दृष्टि भी दे रहे हैं, वो बाबा हम बच्चों को दृष्टि दे रहे हैं परंतु दृष्टि हम तो दृष्टि से शक्ति प्राप्त करते हैं परंतु बाबा हम बच्चों को दृष्टि देकर के क्या देख रहा है, वो बाबा ने कल बता दिया। बाबा ने कहा कि हर बच्चे के नैनों में हर बच्चे का भाग्य देख रहे हैं, हर बच्चे का भाग्य देख रहे हैं। ये भाग्य देखने का कार्य हम नहीं कर सकते हैं, दुनिया वाले कर, दुनिया में भी और कोई नहीं कर सकता है, परमात्मा ही, क्योंकि त्रिकालदर्शी परमात्मा है, तो त्रिकालदर्शी परमात्मा ही हमारे भाग्य को देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। मैं आपको एक हंसी की बात सुनाऊं। ब्रह्मा बाबा के पास एक भाई आया और उसने कहा कि मेरी माँ जो है मुझे कहती रहती है कि तू शादी कर ले, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, तो मैं क्या करूं। बहुत सूक्ष्म बात है, गहरी बात है, उसको ऊपर ऊपर से मत समझना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि हाँ बच्चे तू शादी कर सकता है। तो मैं बाजू में बैठा था, वो भाई जैसे गया, मैंने कहा ठीक है बाबा, आज से शादी करने के लिए परमिशन आपसे चाहिए, तो यही कह देने का कि मेरी माँ जो है नहीं तो आत्महत्या कर लेगी, माँ आत्महत्या कर लेंगी, उसी के उस डर के मारे आप छुट्टी दे देंगे, तो ये आपसे शादी की छुट्टी लेने के लिए हर कुमार को ये विधि अपनाने के, मैं खुश मैं बता दूं सबको। बाबा ने कहा नहीं, ये बात तो ही है। तो मैंने कहा क्या बात है, क्यों आपने छुट्टी दिया। कहा बाबा ने कहा आप बच्चे त्रिकालदर्शी नहीं है, ये बाप त्रिकालदर्शी है। मैंने कहा त्रिकालदर्शी बाप से क्या फर्क पड़ा। बाबा ने कहा कि ये बच्चा जो है, मैं जानता हूँ मैं त्रिकालदर्शी हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि ये बाप, मैं उसको समझो मना भी करूँ कि नहीं बच्चा तुम शादी नहीं कर सकते, परंतु ड्रामा में उसका पार्ट ही है शादी करने का, और मैं बाप भी हूँ, और कोई भी बाप, और मैं जानता हूँ कि बाप ने डायरेक्ट ना कही, और उसके बाद भी ये बच्चा अगर शादी करता है तो बाप की आज्ञा जो है उसकी अवज्ञा करने का उसको 1000 गुना दंड हो सकता है। तो मैं बाप हूँ, तो कौन ऐसा बाप होगा जो खुद अपने कर्तव्यों के आधार पर अपने बच्चों को 1000 गुना दंड का निमित्त बनावे। इसलिए मुझे बाप बन करके उसको छुट्टी देनी पड़ी। बाकी ये तो मैं जानता हूँ और आप भी जानते हो, जो भी जिस प्रकार से जो कर्तव्य करते हैं उसका फल तो मिलता ही है। तो इस प्रकार से बाप जो है त्रिकालदर्शी होने के कारण कई बातें होती, इसलिए कल बाबा ने भी कहा त्रिकालदर्शी बाप जो है हमारे नैनों को देख करके, हमारे नैनों से हमारा भाग्य को देख रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। और फिर हर एक जन्म में 21 जन्मों का भाग्य हम बना रहे हैं, और हर एक के मन में परमात्म प्यार अनुभव हो रहा है, और एक जन्म में इतना श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो, लवलीन बन रहे हो, अशरीर अपने घर परमधाम जाएंगे। एक वाक्य में सारा ज्ञान का सार बता दिया है बाबा। देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, यह परमात्म प्यार एक जन्म में इतना श्रेष्ठ बना रहा है, जो आत्मा लवलीन बन अशरीरी बन परमात्म प्यार के अनुभव हो, ये अशरीरी बन अपने घर परम धाम जाएंगे, और साथ में अपने राज्य के अधिकारी भी बन जाएंगे। एक ही वाक्य में सब कुछ आ गया, परमात्मा के प्रेम में लवलीन भी हो गया, अशरीरी बन गया, परम धाम भी जाने की बात कही, और सत्यु त्रेता का राज्य का अधिकारी भी बन गया। ये सारी बातें एक महावाक्य में सुनाई। दुनिया के अंदर एक कहानी है, आप सबने सुनी होंगी, एक अंधा था, बहुत गरीब भी था, उसके सामने भगवान प्रसन्न हो गए, भक्ति मार्ग की कहानी है। तो भगवान ने उसको कहा अच्छा बच्चे तुम एक वरदान मांग। तो कहा ठीक है मैं एक वरदान मांगू। कहा एक से ज्यादा नहीं मांगना। कहा नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, वो अंधा था, गरीब था, उसको शादी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो उसने वरदान में क्या मांगा, भक्ति मार्ग की कहानी है, उसने कहा कि मैं अपनी आंखों से, तो इसलिए क्या हो गया, अंधा था, आंख मांग लिया। फिर उसने कहा कि मेरे 7वें बच्चे की बहू को उसके महल के अंदर सोने के बर्तन के अंदर छाछ जो है उसको बलोते हुए, मुझे छाछ को बनाते हुए उसको मैं अपने देखूं। इसलिए क्या हो गया, सातवें बच्चे, मैंने सात बच्चे भी मांग लिए, महल भी मांग लिया, महल के अंदर उस बच्चे की शादी भी हो गई और सोने के बर्तन के अंदर ये छाछ मतलब घर में गाय भैंस सब कुछ हो गया। इस प्रकार से एक वरदान के अंदर सब कुछ मांग लिया एक शब्द के। इस प्रकार से बाबा ने कल एक महावाक्य के अंदर परमात्म लीन का अनुभव कराया, परम धाम का भी अनुभव कराया और सत्यों की दुनिया का राज्य भाग के भी हमको वरदान दे दिया। फिर बाबा ने कल हम बच्चों को बता दिया बाबा क्या बनाना चाहते, क्या क्या मैंने आपको पहले बताया। बाबा ने ज्ञान तो 99% सब कुछ दे दिया, अब उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण करने का। इसलिए बल कल बाबा ने कहा कि आज बाप दादा हर बच्चे को मनजीत जगनजीत बनाना चाहते हैं, मनजीत जगनजीत बनाना चाहते हैं। दुनिया में यही कहते हैं कि मन को जीतना बहुत कठिन है। एक वेस्टर्न एक इंडियन फिलोसोफर ने तो ये कहा हुआ है कि कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है पर तो मन को जीत नहीं सकते हैं। इस प्रकार के उसने फिर अपने अपने विचार बताए हुए हैं। मतलब बाबा कहते हैं कि नहीं, मन जीत हो सकता है और मन के आधार पर जगत जीत भी बन सकता है, क्योंकि बाबा ने कहा ये मन मेरा है, मैं उसका मालिक हूँ। जैसे आज भी रतनमयी दादी ने कहा ना, मन जो है वो आत्मा की संकल्प शक्ति है। और शास्त्रों में अलग बात है, शास्त्रों में मन को सबको अलग कर दिया हुआ है। शंकराचार्य जो है उसने आत्मशतकम 6 श्लोक का मन के आत्मा के बारे में परिचय दिया हुआ है। उसमें पहला ही श्लोक है मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न चक श्रोत्र जीवे न चक घ्राण नेत्रे न च व्योम वीर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इस प्रकार से पहला ही श्लोक है उसमें, मैं न मन हूँ न मैं बुद्धि हूँ न मैं चित्त हूँ, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम अहंकार न चित्त है, इस प्रकार की बातें कर दिया हुआ है। और बाबा ने क्या बताया है, मन बुद्धि संस्कार युक्त आत्मा है। मन जो है वो उसकी विचार शक्ति है, बुद्धि बुद्धि जो है निर्णय शक्ति है, संस्कार जो है हम सब में संस्कार भरे हुए हैं। बाबा बताते हैं कि इतनी छोटी सी आत्मा के अंदर 84 जन्मों का संस्कार भरा हुआ है। तो इस प्रकार से बाबा ने आत्मा की परिभाषा सबसे निराली कर दिया हुआ है और इसके आधार पर बाबा ने कहा मन को जीतना बहुत जरूरी है। और बाबा ने कहा जैसे हाथ पांव को ऑर्डर मिलकर चलाते हो इसी प्रकार से मन को भी चलाओ, मन को भी शक्ति स्वरूप होकर के चला सकते हो, मालिक बनकर के चला सकते हो। और इसीलिए ही गीता में बाबा ने कहा है कि शास्त्रों में गीता आदि में आटे में लून समान कुछ ने बात छपी हुई है, लिखी हुई है। गीता में भी लिखा हुआ है कि मन कारण मोक्ष बंधन, मोक्ष और बंधन आदि का कारण मन है। मन इस प्रकार से मन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है शास्त्रों के अंदर। आज बाबा ने कल सब बातों को सार में रूप में बता दिया कि मालिक बन करके मन को चलाना है और मन जीत जगत जीत बनना है। फिर बाबा ने जो नए आए थे उनके लिए उनके साथ बात किया। बाबा ने कहा कि आज बाप दादा देख रहे कई आत्माएं अपने घर में पहुंच गई है। ये बाबा की बात बहुत सुंदर, कल उन्होंने नए लोगों के साथ कैसे बात करने का और थोड़ी बात करके के उनको घरेलू बना करके बाप के बना करके उसको वारिस बना करके और उसके जीवन में परिवर्तन करके उनको आगे का ईश्वरीय सेवा का सेवा के लिए तत्पर करना, ये परमात्म शक्ति है, परमात्मा की युक्ति है, वो हमें भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वरीय सेवा तो हमें करनी ही है, तो जब हमको ईश्वरीय सेवा करनी है तो हम कैसे सेवा करें। इसका एक उत्कृष्ट श्रेष्ठ एग्जाम्पल कल बाबा ने दिया कि कैसे 160 जितने आए हुए थे, इतने 22-25 हजार बहन भाइयों के बीच में उनके साथ बातचीत कर करके उनको अपना बना करके उनके द्वारा भविष्य में ईश्वरीय सेवा के निमित्त बनाना, ये सारा ही एक छोटी सी मुरली के अंदर थोड़ी सी मुलाकात के अंदर बाप ने उनको अपना बना दिया। वो जो गीत है ना सिनेमा का गीत, किसी ने अपना बना करके मुस्कुराना सिखा दिया। इस प्रकार से किसी ने अपना बना करके बाप के जीवन, बाप के आधार पर अपना जीवन तत्पर करने का, समर्पित करने का बाबा ने युक्ति बताई। ये बहुत सुंदर बातें हैं। जिन्हों को भी टीचर बनना हो, जिन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक हो और सेवा में सफलता प्राप्त करनी हो, ये कल की बाबा की मुरली, बाबा ने किस तरीके से, किस युक्ति से उनके साथ बात किया। जैसे कहा ना, आज कई आत्माएं अपने घर में पहुंच गई है। हम जब भाषण करते हैं, प्रदर्शन यहाँ तो जो भी समझाते हैं, उस टाइम पर कभी ये नहीं कहते हैं कि आप अपने घर में पहुंच गए, कहते हो नहीं कहते, करते हो। और बाबा ने क्या किया, आप अपने घर में पहुंच गए, तो इसलिए क्या हो गया, उनको घर के सदस्य बना दिया। और इस प्रकार से बाबा ने युक्ति कर करके कैसे बाबा की बात को दुनिया के सामने रखने का हम बच्चों को सिखाया है। बाप दादा सभी को अति स्नेह और शक्ति रूप में मुबारक देते हैं, स्नेह और शक्ति रूप में मुबारक देते हैं। फिर क्या, साथ में वरदान भी देते हैं। और क्या वरदान दिया, बहुत सुंदर। देखो कितने बार नए लोग को भी इस प्रकार से वरदान की बात कहते हैं तो प्रसिद्ध हो जाता है, उनको अच्छा लगता है। बाबा ने कहा सदा शक्ति स्वरूप आत्मा बन, कितनी सुंदर सरल बात है, सदा शक्ति स्वरूप आत्मा बन, इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले, इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले मास्टर बन, मन जीत जगत जीत बन, सदा खुश रहना और खुशी बांटना। क्योंकि आज विश्व के आत्माएं अपने अपने कार्य करते हुए खुशी की बजाय अनेक सर्कमस्टेंसेस में अपने को मजबूर समझती है। और एक आगे दो शब्दों में आगे बाबा ने सब कुछ बता दिया, दो शब्द कैसे मजबूर को मजबूत करो, ऐसे मजबूर को मजबूत करो। तो देखो कितना सुंदर वरदान भी दे दिया, कितना सुंदर उनको कार्य का लक्ष्य भी दे दिया कि आपको ये करना है, और मजबूर को मजबूत करो। और क्या बताया, खुशी बांटो। संसार की हालत देख रहे हो लेकिन अपने को न्यारा और बाप का प्यारा बन, उस प्यार में लवलीन रहो। अच्छा, ऐसा कर करके बाबा ने उनसे मुलाकात किया। हाँ कितने सुंदर, देखो थोड़े ही महावाक्यों में, थोड़े ही शब्दों में अच्छी तरीके से बाप का परिचय, यज्ञ का परिचय, कर्तव्यों का परिचय, और आए हुए को अपने घर में पधारने का, आने का सौभाग्य दिलाने का, ये सारी बात एक थोड़े ही महावाक्यों में कितनी सुंदर तरीके से कही। हम लोग क्या करते हैं, लंबे लंबे प्रवचन करते हैं, लंबे लंबे, इतना लंबा प्रवचन करते हैं कि मुख्य जो सार जो होता है ना वही हम भूल जाते हैं। बाबा ने सार के रूप में, बाबा ने एक साकार मुरली में भी कहा हुआ है, ज्ञान को दो शब्दों में भी बता सकते हैं और घंटों तक भाषण करने के बाद भी कुछ भी नहीं समझा सकते, ऐसा भी होता है। कभी जानकी भी कहती थी कि हमारे हाथों में छोटी बात को बड़ी बात करना और बड़ी बात को छोटी करना। तो इस प्रकार से बाबा ने कल बहुत सुंदर रूप में इतने सब इतने आए हुए इनके बीच में 160 लोगों के साथ बात किया। और बाबा ने कहा आज जो आए हुए जरा उठ करके उसको उठाया, और आप विशेष निमंत्रण पर आए हैं। और बाप दादा ने क्या बोला, बाप दादा बच्चों को देख खुश है कि आप अपने घर पर पहुंच गए। देखो कितने सुंदर बात कही, उनको घर का मेंबर बना दिया। हाँ बाप दादा बहुत खुश है कि आप अपने घर में पहुंच गए। इस प्रकार से हम नयों के साथ बातचीत करें तो मैं समझता हूँ नए बहुत जल्दी बाबा के ज्ञान से प्रभावित होकर के बाप के बन सकते हैं। अपना घर लगता है, बाबा ने फिर क्या बोला, अपना घर लगता है ये संस्था नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं है, परंतु अपना घर लगता है। हाँ जिनको अपना घर लगता हो उनको हाथ उठाने के लिए बात कही। बाबा ने कहा कि बाबा भी बच्चों को देख क्या करता है, गीत गा रहा है कि वाह बच्चे वाह। क्योंकि आज के विश्व को आवश्यकता है अपने खुशनुमा जीवन की। तो एक 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 अनेक आत्माओं को परिचय, आप एक एक अब क्या करने का है, देखो उसको घर का बना दिया और उसके बाद उनको कहा आपको क्या करने का है, आप एक एक अनेक आत्माओं को परिचय दे, अनेक आत्माओं को परिचय दे, परिचय दे इस भारत को, जैसे भारत ऊंचा था वैसा बनाना है। आप समझे, कितना उनको घरेलू भी बना दिया, फिर उनको ड्यूटी भी दे दिया, क्या ड्यूटी दिया, यूनिवर्सल ड्यूटी दिया, कि एक एक को एक एक जो जितने भी आए हुए 160 एक एक अनेक आत्माओं को परिचय दे इस भारत को, जैसा भारत ऊंचा था वैसे बनाना है। देखो कितनी सुंदर बात कही, और भारत को श्रेष्ठ बनाने की बात श्रेष्ठ कर्तव्य का लक्ष्य उनके सामने रख दिया। इस प्रकार से चंद शब्दों में, थोड़े शब्दों में अनेक प्रकार की बातें बताना बहुत बड़ी बात है। बाप दादा भी खुश है और आप सभी अपने परिवार को देख खुश है। देखो दो दो हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। आप आए हैं अपने घर में अपने बाप और अपने परिवार से मिलने के लिए। इस प्रकार से नए लोग के साथ बात करना चाहिए, घरेलू रूप में उनको अपना बाबा का बच्चा बना देने का। तो इसलिए ये कला सीखने की है। कल बाबा ने जो कला का डेमोन्स्ट्रेशन किया, ये के सामने वालों को घरेलू कैसे बनाए और घरेलू बना करके उनसे बाप का कर्तव्य कैसे कराने का वो सिखाया। ये सीखने की जरूरत है। और इसलिए हमारे में जो भी बहन भाई भाषण कर सकते हैं, प्रदर्शनी समझा सकते हैं, ऐसे जो भी जिसको हम कहते हैं टीचर क्वालिटी भाई बहन है, उन टीचर क्वालिटी भाई बहनों को ये बाप की बाप दादा की कल की मुरली का ये जो कार्य जो है वो सीखना चाहिए। और उसी तरीके से हम प्रदर्शनी समझाए, उसी तरीके से हम भाषण समझाए, तो बहुत कुछ प्रभाव दुनिया के ऊपर हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा आप आए हैं अपने घर में, देखो क्या कहा, एक अपने घर में आए, फिर अपने बाप, तीसरी बात अपने परिवार को मिलने के लिए आए हैं। तो बाप दादा यही वरदान देते हैं कि खुशी कभी नहीं गवाना, ये खुशी जो यहाँ प्राप्त हो खुशी को कभी नहीं गवाना, खुश रहना और खुशी बांटना। ये कितनी सुंदर यूनिवर्सल बात है, खुश रहना और खुशी बांटना, चाहे वो कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे अमेरिकन हो, कोई भी हो, अब खुश रहना तो सबका लक्ष्य है कि हम खुश रहे, और क्या है, औरों को खुश रखना अर्थात खुशी बांटना। ऐसा यूनिवर्सल तरीके से बाबा ने उनके सामने ज्ञान की बातें को रख दिया। तो क्या है, हम लोग कभी कभी ऐसा बोल देते हैं जिसके कारण सामने वाला जो है सिद्धांत की बातों में झगड़ा कर देता है। झगड़ा न करे, इसके बदले सिंपल बात है कि आप अपने घर में आए हैं, हम बाप से मिलने के लिए आए, परिवार से मिलने के लिए आए, और बाप वरदान देता है यह खुशी कभी भी कम न हो, और खुश रहना और खुशी बांटना। ये बात बाबा से सीखने की है कि ऐसे मतलब चंद शब्दों में, थोड़े शब्दों में ही सामने वाले को बाप का बना देना, ये कला है। 16 कला सब संपूर्ण बनना है, उसके अंदर ये कला है कि सामने वाले को कैसे बाप का बना देना, ये कला सीखने जैसी है। और इस प्रकार कहकर के बाबा ने कल मुरली समाप्त की। मैंने कहा ना 45 मिनट बाबा ने इतनी बातें समझाने में लिया, बीच में 5 मिनट बाबा ने योग भी कराया था, उसके बाद सेवा का टर्न के बारे में बाबा ने बात बताई, कर्नाटक वाले बहन भाई आए हुए हैं उसके बारे में बाबा ने जो बात कही वो तो आप जानते हैं। कोई भी प्रोग्राम, हर एक आधा जो नया जो है 11,000 बहन भाई कर्नाटक से आए हैं, बाबा ने भी बताया बहुत खुश हो रहा है। बाबा ने कहा ईश्वरीय सेवा का कोई भी प्रोग्राम बनाओ, तो बाबा ने क्या कहा, अब ऐसा भी प्रोग्राम बनाओ कमाल का प्रोग्राम बनाना, कर्नाटक में विस्तार भी बहुत बढ़ रहा है और भी बढ़ती रहेगी सेवा, और बाप दादा यही वरदान देते हैं कि सदा खुशी खुशी में कर्नाटक में सभी भाई बहनों को परमात्म संदेश जरूर पहुंचाओ, कोई रह न जाए। बाप दादा खुश है कि सेवा भी कर रहे हो और करते भी रहेंगे। फिर पहली बार जो आए हुए उनसे भी बाबा ने हाथ खड़ा करवाया, और जो भी नए आए हुए थे उनको भी बाबा ने यही कहा कि आप अपने घर में आए हैं, आप क्या करना है। जो नए भी आए उनके सामने कितना सुंदर तीन चार शब्दों में ही लक्ष्य बाबा ने रख दिया। बाबा ने कहा घर में आए हैं, लेकिन बाप दादा से पूरा वर्षा लेके वारिस बन करके जाना, ये सबके लिए है। कोई नए पहली बार कल आए उसके लिए नहीं है, सबके लिए है। हाँ, कि बाप दादा से पूरा वर्षा लेकर के वारिस बन करके जाना, ये सबको मंजूर है। सबको चाहते हो ना बाप दादा से पूरा वर्षा लेकर के वारिस बन करके जाना, ये जो बाबा ने कहा वो हम सबको मंजूर है, नए लोग के भी ये मंजूर है। और बाबा ने टीचर्स को भी कहा मन जीत जगत जीत, मन के मालिक बन, यह टाइटल जरूर लेना है। फिर डबल विदेशियों की बात कही कि बाबा उनको डबल पुरुषार्थी कहते हैं, और उनके अंदर भी आगे बढ़ने के लिए बात कही। और उसके अंदर बाबा ने जो एक बहुत सुंदर शब्द यूज किया हुआ है, अटेंशन है, और अटेंशन से क्या होगा, टेंशन समाप्त तो हो जाएगा। अटेंशन से टेंशन समाप्त तो हो जाएगा, इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा क्या कहा, मैं डबल विदेशियों को डबल प्यार देता हूं। फिर बाबा ने फिर मुरली का कारोबार चालू रखा। बाबा ने कहा जो अभी आगे के लिए तो सभी आगे के लिए क्या लक्ष्य रखेंगे, सभी को यही लक्ष्य रखना है कि स्वयं भी शक्तिशाली बन, औरों को भी बाप का परिचय दे, वारिस बनाने की सेवा करनी है। इस सीजन क्या, या तो इस सीजन से पहले जो सेवा का लक्ष्य था, इस सीजन से पहले अब हमारे पास बाबा के मुरलियों के द्वारा हमको जो लक्ष्य मिला था वही था कि संदेश देने का, हाँ, ज्यादा में ज्यादा लोगों को संदेश देने का, ताकि कोई भी रह न जाए। तो इसलिए जिसको अंग्रेजी में तीन शब्द कहते हैं, एक है सेवा का लक्ष्य मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस, अर्थात संदेश देने की, संदेश देने के लिए कर्तव्य करने के लिए जो सेवा करते हैं। तो इसलिए अब तक 99% हमारी जो ईश्वरीय सेवा थी वो संदेश देने की थी। इस सीजन की शुरू में बाबा ने उसमें परिवर्तन कर दिया और कहा संदेश देने का काम तो और भी कर सकते हैं, आप अभी और क्या करो, आप अनुभव कराने की सेवा करो, अनुभव कराने की सेवा करो। इसके लिए बाबा ने उसका नाम कर दिया एक्सपीरियंस ओरिएंटेड गॉडली सर्विस। एक पंक्ति जैसे स्कूल होती है ना, एक प्राइमरी होती है, फिर सेकेंडरी होती है, फिर हायर सेकेंडरी होती है, फिर कॉलेज होती है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। इस प्रकार से प्राइमरी लेवल के संदेश देने की सेवा थी, उसके बाद अनुभव कराने की सेवा थी, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड गॉडली सर्विस। और कल बाबा ने सेवा का और आगे का लक्ष्य दिया। बाबा ने जो कहा मैं आपको पढ़ के बताता हूं। अभी हर एक सेंटर अपने आने वाले भाई बहनों को वारिस क्वालिटी बनाओ। वारिस क्वालिटी अर्थात जो सदा बाप के साथी बन, खुद भी चले और अनेकों को भी बाप के साथी बनाए। बाप दादा खुश है और चारों ओर की सर्विस अच्छी बढ़ रही है। हाँ, तो इस प्रकार से क्या अभी लक्ष्य रखने का है, सेवा का लक्ष्य वारिस क्वालिटी, ऐसे बाप का परिचय दे करके वारिस बनाने की सेवा करनी है। वारिस माना रिजल्ट, आप समझे, तीन स्टेजेस, मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस, उसके बाद एक्सपीरियंस ओरिएंटेड गॉडली सर्विस, और उसके बाद तीसरा जो कल लक्ष्य दिया रिजल्ट ओरिएंटेड गॉडली सर्विस। आप समझे, मेहनत, धंधे में भी ऐसा ही होता है। धंधे में भी जो काम कोई काम करता है तो क्या होता है, उसका लक्ष्य तो होता ही है ना प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। धंधा कोई धर्मशाला है धर्मशाला? कोई धंधा धर्मशाला के रूप में करता है क्या? सबका लक्ष्य होता ही है कि हम धंधा ऐसा करें कि जिसमें अच्छे से अच्छा प्रॉफिट, ज्यादा में ज्यादा प्रॉफिट हो, ऐसा ही होता है ना। नौकरी भी जो करता है वो क्या करता है? वो कि वहां सेवा करने के लिए नहीं जाता है, नौकरी करने के लिए जाता है। क्यों जाता है? ताकि वहां से अच्छे में अच्छा पगार मिल जाए। हमारे साथ, मैं तिरुपति गया हुआ था, तिरुपति का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो था उनके साथ हमारी बात हुई। इन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्मा कुमारी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आपके पास समर्पित जीवन वाले व्यक्ति काम करते हैं, सेवाधारी काम करते हैं, अपने को बाप का बच्चा समझ करके काम करते हैं। और हमारे यहाँ, तिरुपति के वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा, हमारे यहाँ सभी नौकर के रूप में काम करते हैं। हम यहाँ जितने भी सेवाधारी है, जितनी भी यहाँ बहने बैठी है, कोई नौकर के रूप में काम करती है या बाप की बच्ची या बच्चा बनकर के काम करते हैं? कोई यहाँ ऐसी है जो अपने को नौकरी बाबा के नौकर समझ करके सेवा करती हो? कोई नहीं है। कोई भी माँ होती है अपने बच्चों की सेवा करती है, जो हर माँ बाप जो है अपने बच्चों की सेवा करते हैं, नौकर बनकर के नहीं करते, परंतु अपना भविष्य में होने वाला वारिस के रूप में करती है सेवा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने पास वारिस क्वालिटी के रूप में हम बाबा की सेवा करते हैं, उसके बच्चे बनकर के सेवा करते हैं। और वो तिरुपति के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हमको कहा कि हमारे यहाँ 18,000 लोग काम करते हैं, पर उसमें एक भी वारिस क्वालिटी के नहीं है। तो मैंने कहा ये क्या करते हैं? क्या उनके सामने तीन बात का लक्ष्य होता है? मैंने कहा अच्छा, क्या तीन बात का लक्ष्य होता है? क्या मास महीने के आखिर में पगार कितना मिलेगा? अच्छा, फिर वर्ष के आखिरी में बोनस कितना मिलेगा? और तीसरा, वर्ष के आखिर में इंक्रीमेंट कितना मिलेगा? नौकरी में तो यही होता है ना, पगार कितना मिलेगा, बोनस कितना मिलेगा और इंक्रीमेंट कितना मिलेगा। हमारे पास ये तीनों बातें नहीं है। कोई भी सेंटर पर जो भी रहने वाले समर्पित बहन भाई जो है, उसमें कोई ऐसा है जो समझते हैं कि हम बाबा के नौकर हैं? मीरा ने गाया हुआ है कि प्रभु जी मुझे चाकर रखो, चाकर रेसो बाग 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 लगा, मतलब बाग लगा तो ये ऐसा कोई मीरा ने भजन गाया हुआ है, हे परमात्मा मुझे आपका चाकर बना दो। हमारे यहाँ वो फिलोसफी ही नहीं है। हम कोई यहाँ परमात्मा के चाकर नौकर बनकर के बैठे नहीं है, है कोई? कोई यहाँ बैठा हुआ हो परमात्मा का नौकर के रूप में अपने को समझता हो, हाथ खड़ा करे। कोई नहीं है। सब क्या है? बाप के बच्चे बनकर के सेवा कर रहे हैं, बाप के बच्चे बनकर के जान ले रहे हैं और बाप के बच्चे बनकर के समर्पित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये जो है, कल बाबा ने जो बात कही रिजल्ट के रूप में, ऐसे ही सबको वारिस क्वालिटी बनाओ। और वारिस क्वालिटी की डेफिनेशन बताई कि सदा बाप के साथी बन, खुद भी चले और अनेकों को बाप का साथी बनावे। तो ये अब बाबा रिजल्ट चाहते हैं। रिजल्ट के रूप में कारोबार होना चाहिए, रिजल्ट के रूप में ईश्वरीय सेवा होनी चाहिए। एक साकार बाबा की भी मुरली है। साकार बाबा ने कहा हुआ है कि आपके पास कोई 7 दिन का कोर्स करने के लिए आवे, आपका समय बहुत वैल्यूएबल है। आप उनको जब ज्ञान सुनाते हो और उसका ध्यान इधर उधर होता है, इधर घूमता रहता है, हम एक स्थिर होकर के, एक चित्त होकर के मुरली आपका 7 दिन का कोर्स नहीं सुनता है तो उसको भगा दो, तो तुम्हारे लिए ज्ञान नहीं है। ऐसा कर करके अपनी शक्तियां जो अपनी एनर्जियों को बचाई है। इस प्रकार से बाबा ने भी नए लोग के साथ कैसे व्यवहार करने का, जो अच्छा पात्र हो, गीता में भी है, दातव्यम यति यद् दानम दीयते नोपकारणे देशे काले च पात्र च तद् दानम सात्वकम्। देश, काल और पात्र, इसको देख करके ही दान देना चाहिए। तो देश, व्यक्ति कैसा है, पात्र कैसा है, उसके बाद ज्ञान दान देना चाहिए। इस प्रकार का गीता ने भी कहा हुआ है। और वो जो ज्ञान देने का तरीका है वही श्रेष्ठ सात्विक दान है, सात्विक ज्ञान है, इस प्रकार से गीता में भी कहा हुआ है। तो इस प्रकार से बाबा ने कल हम बच्चों को ईश्वरीय सेवा का लक्ष्य पहले जैसे मैंने कहा ना, पहले मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस था, उसके बाद एक्सपीरियंस ओरिएंटेड या एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड गॉडली सर्विस कहा, और कल बाबा ने रिजल्ट ओरिएंटेड गॉडली सर्विस कहा है। तो इसलिए अभी ईश्वरीय सेवा का लक्ष्य यही रखना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड करना चाहिए। फिर बाबा ने क्या कहा, शिवरात्रि दिल्ली में बालों ने भी प्रोग्राम बनाया हुआ है। दिल्ली में इन्होंने पहले तो सोचा हुआ था मिनी कुंभ रखेंगे, फिर हमारी मीटिंग में बात ब्रिजमोहन भाई ने बताई, उनके पास भी कल मीटिंग भी है और अच्छी, जिससे वो लोग तैयारी करने वाले, 3 से 10 फरवरी मार्च के प्रोग्राम शिवरात्रि तक चलने वाला है। भारत का भविष्य उज्ज्वल भविष्य के रूप में कुछ काम उन्होंने बनाया हुआ है टॉपिक। इस प्रकार से बाबा ने दिल्ली की भी बात कही और इस प्रकार से बनाया है बाबा ने। इसको बाबा ने क्या कहा, शिवरात्रि के बारे में बाबा ने कल डायरेक्शन दे दिया कि हर एक जोन प्रोग्राम बनाए, कम से कम अपने शहर में शिवरात्रि पर शिव बाबा के कम से कम बच्चे जरूर बनाए। अब सेवा क्या करने का है, सेवा का लक्ष्य बाबा ने दे दिया। क्या करना चाहिए, सेवा ऐसी करिए कि जिससे सुनने वाले समझने वाले ज्यादा में ज्यादा संख्या में शिव बाबा के बच्चे जरूर बने। हमको बाबा का बच्चा बनाने का लक्ष्य रखना है। अब तक क्या करते थे, संदेश देने का, संदेश दे दो ताकि बाद में कोई बोले ना दे। आगे भी बाबा ने वही बात कही, वो संदेश देने की बात भी है, संदेश भी दो, उसको अनुभव भी कराओ, और उसके बाद लक्ष्य बाबा ने रखा हुआ है ये शिवरात्रि कैसे मनाएंगे, ज्यादा में ज्यादा संख्या में बाप के बच्चे बनाना है। और बाबा ने हस्ती में भी कहा, प्रोग्राम तो सब करते हैं, सेवा शिवरात्रि पर हजारों जगह पर प्रोग्राम चलेंगे, प्रोग्राम तो सब प्रोग्राम करते हैं, लेकिन अभी देखो रिजल्ट ओरिएंटेड बात है, लेकिन हर प्रोग्राम से वारिस कितने बनाए, कितने समय पाए, यह रिजल्ट निकालो। रिजल्ट ओरिएंटेड सीधा ही शब्द बाबा ने यूज कर दिया। क्या कहा, प्रोग्राम तो बहुत बनाते हैं, प्रोग्राम तो सब करते हैं, लेकिन हर प्रोग्राम से वारिस कितने बनाए, समीप कितने आए, यह भी रिजल्ट निकालो। आप समझे, रिजल्ट निकालने की बात है, संदेश देने की बात नहीं है। अनुभव कराने की बात अभी पुरानी हो गई, पुराने की बात क्या, अभी नई बात है। क्या करने का, कितने वारिस कितने बनाए, समीप कितने आए, यह रिजल्ट निकालो। और बाकी भी ईश्वरीय सेवा का लक्ष्य जो है, बाबा ने कहा आज बाप दादा ने बताया, मन जीत जगत जीत यह अवश्य बनाना है, और फिर मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर, व्यर्थ को विदाई दे दो, नहीं तो व्यर्थ संकल्प भी समय व्यर्थ संकल्प में भी समय निकल जाता है। तो आज का पाठ है, लेसन है, मन जीत जगत जीत बनना है, मेरे ऊपर राज्य होता है, इस प्रकार से बाबा ने बात कही। फिर नए लोग को बाबा ने कहा, फिर नए लोग के लिए बाबा ने कहा, बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, योग करेंगे। शांति, मैं आपको बता रहा था कल बाबा ने रिजल्ट ओरिएंटेड गॉडली सर्विस करने को कहा है। ये रिजल्ट निकालना बहुत कठिन बात है, जो हमारे पुराने भाई बहन बैठे हुए हैं उनको मालूम होगा 87-88 में, मतलब 10 से करीब 15-17 साल पहले, 20-25 साल पहले यज्ञ में नक्की हुआ, हर बहन भाइयों को एक लक्ष्य दिया गया, ईच वन टीच वन 87-88 में कहा गया, हर एक आत्मा को, हर बी के भाई बहन को अन्य एक आत्मा की ज्योत जगाने का लक्ष्य दिया गया। एक 12 महीने की मेहनत के बाद एक व्यक्ति को ही बाबा का बनाना, बहुत सहज बात लगती थी सबको। हमने कहा बहुत, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो दादी प्रकाश मणि ने कहा, रमेश ये बहुत कठिन बात है, सारे साल में एक आत्मा की ज्योत जगाना, आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, बाबा की ये चैलेंज को आप स्वीकार कर लो और ट्राई करो, बहुत कठिन बात है। हाँ, एक साल में एक आत्मा की ज्योत जगाना बहुत कठिन बात है, पर हमने देखा रिजल्ट के रूप में, क्योंकि दादी ने अनाउंस किया था कि जो जस सेवा केंद्र पर सबसे ज्यादा में ज्यादा संख्या बढ़ेंगी उसको दादी बाप दादा की तरफ से इनाम देंगी। एक साल में एक आत्मा की ज्योत जगाना कितना सहज काम था, लक्ष्य बहुत सहज था, परंतु बहुत कठिन रहा। नहीं तो क्या होना चाहिए, 100 भाई बहन आने वाले जो है क्लास में, हर एक 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 को ज्ञान देते हुए तो 100 के 200 हो सकते हैं। परंतु सारे साल के बाद हमारी शशि बहन ने रिजल्ट मंगाई, सभी सेंटरों से आया रिजल्ट, और उसके बाद रिजल्ट ये हुआ, 100 में हर एक एक को ज्ञान दे तो क्या हो जाएगा, 100 का 200 होना चाहिए। एवरेज निकाली सारे सभी सेवा केंद्रों के, 87 केंद्र जितने भी सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र, गीता पाठशाला, क्लासेस आदि थे, उन सब का रिजल्ट निकाला तो 100 के ऊपर 60% रिजल्ट आया, 60%। जहां 100 खाली सारे साल में एक आत्मा की ज्योत जगाने का था, इतना सहज कर्तव्य रखा हुआ था, इतना सहज लक्ष्य रखा हुआ था, तो भी सारे साल में 100 आत्माओं ने मेहनत किया तो 60 आत्माएं निकले। अब देखते हैं, बाबा ने ये 2013 के अंदर ये बात रखी हुई है कि क्या करने का, कि रिजल्ट निकालो, वारिस निकालो, ये करने का है। हम देखते हैं रिजल्ट क्या होगी। यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, क्या इतना सरल कार्य कर सकते हैं कि एक साल में एक आत्मा की ज्योत जगाएंगे, उसको वारिस क्वालिटी बनाएंगे, बाप के नजदीक बनाएंगे, समीप का साथी बनाएंगे, क्या ये हो सकता है? जो कल बाबा ने जो चैलेंज दिया हुआ है, जो लक्ष्य दिया हुआ है, इसके आधार पर पुरुषार्थ हम करें, हाँ सब कर सकते हैं। जो ऐसा समझता है कि हम एक वर्ष में कम से कम एक आत्मा की ज्योत जगा करके उसको बाप का वारिस क्वालिटी बच्चा बनाएंगे, वो हाथ खड़ा करे। देखो बहुत कम लोगों ने हाथ खड़ा किया है, अभी से ही समझ गए कि हम पास होने वाले नहीं है, अभी से ही हिम्मत नहीं है, हिम्मत पहले से ही युद्ध के अंदर उतरने से पहले ही नक्की कर दिया, हम तो हारने वाले ही हैं। मैंने देखा चारों ओर देखा, मैंने 20% से भी ज्यादा लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया, मतलब पहले से ही मालूम पड़ गया 20% भी रिजल्ट नहीं होने वाली है। और वो जो 20% काम करने वाले उसमें से कितने लोग बनेंगे बाबा के या बनाएंगे, वो तो एक साल के बाद ही मालूम पड़ेगा। इसलिए सेवा करना कोई मासी का घर नहीं है, सब समझते हैं सेवा करना बहुत आसान है, मैं समझता हूँ सेवा करना सबसे कठिन में कठिन बात है। सेवा करना मना जो बाबा ने रिजल्ट चाहे, बाकी संदेश देना वो तो और बात है, सिंपल बात है, संदेश देना, अनुभव कराना और उसमें से वारिस क्वालिटी, एक आत्मा की ज्योत जगाना, वो जो गीत है ना, ज्योत से ज्योत जगा के चलो, वो गीत है। इस प्रकार से अन्य एक आत्मा की ज्योत जगाने का रिजल्ट देखो, कोशिश करना। क्यों आप पहले से ही हाथ खड़ा नहीं करते, खड़ा करो, कल नए लोग आए, इन्होंने भी उमंग उत्साह से हाथ खड़ा किया, दो दो हाथ खड़ा किया। बाबा ने कहा देखो दो दो हाथ खड़ा करते। इस नए लोग के अंदर भी बाबा ने इतना उमंग उत्साह भर दिया, परंतु क्या करे, वो बाबा है और मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा इतना उमंग उत्साह आप में नहीं भर सकता जितना बाबा ने कल भराया। 160 लोगों ने सबने दो दो हाथ खड़ा किया। आप तो यहाँ पुराने बाबा के बच्चे बैठे हुए, और जब मैं कहता हूँ कि रिजल्ट के रूप में अन्य आत्माओं को, एक आत्मा को ही सारे साल में ज्ञान देंगे, रोशनी कर देंगे, उसका बाबा का वारिस क्वालिटी या समीप का रत्न बनाएंगे, वो नहीं कर सकते हैं, तो क्या फायदा। इसलिए देख लीजिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, ये आपको करना ही चाहिए या नहीं आप नक्की करो। फिर बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा आप दूसरी बार आए, विजिटर नहीं होंगे, घर के बन घर वाले औरों को भी बनाएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा है, अभी विजिटर नहीं, आप घर के मालिक है। बालक सो मालिक, विजिटर अपने को विजिटर के समझते हो या घर के बालक समझते हो? जो समझते हो बालिक सो मालिक, वो हाथ खड़ा करे। इस प्रकार से बाबा ने हाथ खड़ा करवाया। और बाबा ने जिन्होंने हाथ खड़ा किया कल, उन्होंने बाबा ने कहा उनको 1000 गुना आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं भी बाबा की ओर से जिन्होंने अभी हाथ खड़ा किया 15-20% बहन भाइयों ने, कि हम एक साल में एक अन्य आत्मा की जोत, कम से कम एक आत्मा की जोत जगाएंगे, उनको बाबा की ओर से क्या कहूँ 100 गुना आपको मुबारक देंगे। अच्छा लग रहा है, देखो वेराइटी ग्रुप है, इस प्रकार से बाबा ने कहा हुआ है। तो इसलिए आप सब हिम्मत, अभी भी मैं कह रहा हूँ हिम्मत रखो। और क्या एक साल में एक आत्मा की जोत नहीं जगा सकते हैं? बहुत सिंपल बात है, पर तो नहीं हो सकता है। मैंने कहा ना 87-88 में 100 में से 7 ब्राह्मण ही सफल रहे, 93% बहन भाई असफल रहे। तो इसलिए ये बात देखो क्या हो सकता है। फिर बाबा को निर्भय भाई ने बताया कि कुंभ मेले में अच्छी सेवा हो रही है, उसके बारे में कहा। बाबा कैसे कहा, बाप दादा उनको कोटि कोटि प्यार देती है, बाप दादा बच्ची को रोज अमृत वेले याद करता है, क्योंकि याद करने से बच्ची में उमंग गुस्सा आ रहा है और उमंग गुस्सा से चल सेवा कर रही है। बाप दादा को समाचार मिलता ही रहता है, बच्ची को बहुत बहुत याद देना। इस प्रकार से बाबा ने करके हम का प्रोग्राम पूरा हुआ। फिर स्टेज का कार्यक्रम शुरू हुआ, स्टेज के ऊपर दादी आ गई, बाकी और भी उसके पहले की भी बातें हैं। फिर बाबा ने क्या कहा, जो भी है सेवा करने के लिए, बाबा ने दूसरी बात भी कही, कहा जो भी आने वाले जो है अड़ोस पड़ोस, तीन लोगों को बाबा ने कहा हुआ है, अड़ोसी पड़ोसी और संपर्क वालों, यह उलेना नहीं दे कि हमको पता नहीं पड़ा। इस प्रकार से बाबा ने सेवा का लक्ष्य भी दिया, पड़ोसी जो भी ये संपर्क वाले, इन सब का सेवा का लक्ष्य रखो। फिर बाबा ने समय की सावधानी भी दिया। बाबा ने कहा समय पर कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, और जो भी होना है अचानक ही होना है, जो भी होना है अचानक ही होना है। यह अचानक की बात सभी को ध्यान में रखनी है। बाबा ने हम सबको ध्यान में रखवा दिया कि यह अचानक की बात सबको ध्यान में रखनी है। अपना भविष्य और औरों का भविष्य भी जितना बनाने चाहो इतना अभी चांस है। जितना अपना भविष्य बनाना चाहो, औरों का भी बनाना चाहो, इतना अभी चांस है। और इसलिए बाबा ने क्या कहा, बहुत सुंदर बात कही है, बाबा हम बच्चों के स्पीड से, पुरुषार्थ की स्पीड से संतुष्ट नहीं है। पर तो बाबा युक्ति से कहता है, हम लोग सीधा बोल देते हैं कि हम आपके पुरुषार्थ से उसके रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। बाबा ने क्या कहा, रफ्तार को और तेज करो। इसका मतलब क्या हो गया, रफ्तार को और तेज करो, इसका मतलब कि हमारी स्पीड से बाबा संतुष्ट नहीं है। समझ गए क्या है समझने वाले? और गीत है समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। इस प्रकार से बाबा ने समझदार को बता दिया कि अभी स्पीड को, अपनी स्पीड को, पुरुषार्थ की स्पीड को और तेज करो। बाबा ने ये भी कहा चारों ओर उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, सब कुछ है, अब क्या करो? अब दुख से दुनिया की आत्माओं को छुड़ाओ, अब अपना राज्य आने दो, सभी बच्चों को चाहे विदेश चाहे देश चाहे गांव, हर बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने युक्ति से कह दिया कि अभी अपनी स्पीड, हाँ पुरुषार्थ की स्पीड, अपने भाग्य बनाने की स्पीड, जो भी कहो उसको तेज करो, तो यही समय है और ये कल्प कल्प की बाजी है, नहीं भरेंगे तो क्या हो जाएगा। मुझे याद है अव्यक्त बाप दादा के सामने एक बहन एक माता बैठी थी, वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो बाबा ने उस बहन को पूछा, बच्ची क्यों रो रही है? तो वो बहन ने कहा कि बाबा मैं अपने भाग्य पर रो रही हूँ कि मुझे साकार बाबा को साकार रूप में देखने का सौभाग्य नहीं मिला। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, अब तुम किसको देख रही हो? साकार में मुझे नहीं देख रही हो क्या? बाप दादा तेरे सामने साकार में है या नहीं? तो कहा है। तो फिर जो सामने बैठा हुआ है उसको याद करो, पुरानी बात को याद करके दुखी होकर के रो क्यों रही हो? और फिर बाबा ने उसको एक बहुत अच्छी सावधानी दिया कि ये तो तेरा भाग्य फिक्स हो गया कि कल्प कल्प तू साकार ब्रह्मा बाप के साकार का कारोबार जो है उसको नहीं देख सकेंगे, परंतु दूसरा भाग्य तेरे लिए खुला है, सच्चू की आज से ब्रह्मा बाबा के साथ अर्थात लक्ष्मी नारायण के साथ सच्चू की आज से आकर के उनके साथ रास करना, उनके परिवार में आना, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बनाने का तेरे पास अभी भी चांस है, अभी भी पुरुषार्थ कर। बाबा ने उसको बहुत सरल शब्दों में कह दिया, अभी भी पुरुषार्थ कर और सत्युग के आदि से पहले लक्ष्मी नारायण के जीवन काल के अंदर ही सृष्टि पर आने का पुरुषार्थ कर। अगर वो भी नहीं किया तो जैसे साकार संगम युग में साकार से नहीं मिल सकी, इस प्रकार से श्री लक्ष्मी और श्री नारायण या श्री राम और श्री सीता का भी साकार रूप में तुम दर्शन नहीं कर सकेंगे। और इसलिए क्या होगा, श्री लक्ष्मी श्री नारायण राधे कृष्ण या तो राम सीता, इन सबको चित्रों के रूप में, चरित्रों के रूप में, मूर्तियों के रूप में ही तुम देखती रहेंगी। जैसे अभी ब्रह्मा सरस्वती को भी तुम चित्रों के रूप में देख रही है, इसी प्रकार से अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो ब्रह्मा सर तो माते लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता इन सब को भी चरित्रों के रूप में, चित्रों के रूप में, मूर्ति के रूप में ही देख सकेंगे। ये सावधानी जो बाबा ने उस माता को दिया ना, इस प्रकार से आप जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने भी साकार बाप दादा को साकार मतलब बाप दादा को साकार में नहीं देखा, ब्रह्मा बाप को या मातेश्वरी को नहीं देखा हो, उनके लिए ये सावधानी है कि अगर आप तीव्र पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अभी जैसे बाबा ने कहा अपने पुरुषार्थ की रफ्तार स्पीड को तेज करो, अगर वो नहीं किया तो यही होगा। जैसे वो माता को बाबा ने कहा कि तुम हमेशा के लिए हर कल्प के अंदर चाहे ब्रह्मा सरस्वती को, चाहे लक्ष्मी नारायण को, चाहे राधा कृष्ण को, इन सबको चित्रों के रूप में, चरित्रों के रूप में, मूर्ति के रूप में, मंदिरों में जाकर के वहां ही देख सकेंगी, उनके साथ चेतन में पाठ बजाने का सौभाग्य तुझे नहीं मिलेगा। इसलिए दुनिया की बातों में रहते हुए, दुनिया के कारोबार में फंस करके, जैसे बाबा का व्यर्थ बातें, ऐसे दुनिया की बातों में फंस करके अपने पुरुषार्थ की स्पीड को क्यों हम कम करें? क्यों हम हमारा श्रेष्ठ भाग्य के ऊपर लकीर लगा देवे? हकीकत यही है, 80% हमारे दैवी परिवार के बहन भाई वर्तमान की समस्याओं में इतने उलझे हुए हैं कि भविष्य की प्राप्ति बनाने के लिए, भविष्य का प्रारब्ध बनाने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। ये करुण वास्तविकता है। और इसलिए क्या हो जाएगा, वो सतयुग त्रेता में आएंगे, बंधु प्रजा के रूप में ही आएंगे, वो भी सतयुग में शुरुआत में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। तो इसलिए ये ध्यान में रखिए, आप सबको हमारी नम्र विनंती है कि जो बाबा ने कल कहा कि अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करो, ये बात हम बराबर ध्यान से सुनिए और अपने पुरुषार्थ को स्पीड को बढ़ाइए। वर्तमान की समस्याओं से उठ करके भविष्य के प्रारब्ध बनाने के लिए पुरुषार्थ में लग जाइए, ये कल की मुरली का सार है। फिर बाबा ने स्टेज के ऊपर कारोबार चला और 9 बजे कारोबार चला, जानकी दादी से भी बात किया, हाँ भवन का भी बहुत सेवा करनी है आदि आदि बात कही, मोहिनी बहन के भी बारे में कहा, परदादी को भी कहा, निर्वेर भाई को भी कहा, हाँ ब्रिजमोहन भाई ने भी बताया बाबा को, हाँ कि अभी उन्होंने प्लान में चेंज कर दिया है। और फिर हमने बाबा को कहा, हमारे वहाँ बॉम्बे में महाराष्ट्र जोन की मीटिंग हुई थी सेवा के प्लानिंग की, उसके अंदर ये बात निकली कि बाबा ने जो कहा हुआ है उसके आधार पर बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, क्योंकि समाज को अगर परिवर्तन करना है तो समाज की समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। हम समाज की समस्याओं को दूर नहीं करें और कहें कि अब समाज अच्छा हो जाओ, समाज अच्छा हो जाओ, समाज कभी भी अच्छा नहीं होगा। जैसे डॉक्टर जो होता है, जिसके रोग के जो उसकी दवा होती है वो दवाई नहीं दे और कहे तुम अच्छा हो जाओ, तो कैसे अच्छा हो जाएगा, वो तो शरीर छूट जाएगा। इस प्रकार से हमारे वहां मीटिंग में बात निकली कि समाज को परिवर्तन करना है, समाज का परिवर्तन करना है तो समाज की समस्याएं जो है उसको दूर करना पड़ेगा, और इसलिए वर्तमान की समस्याएं जो भी है उन समस्याओं को दूर करने के लिए कार्यक्रम रखने चाहिए। आप सबको एक हंसी की बात सुना, पहले मतलब अच्छे 15-20 साल पहले एक नई प्रदर्शनी हम लोगों ने बनाई थी, वो नई प्रदर्शनी का नाम था करंट प्रॉब्लम्स एंड देयर स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, अर्थात वर्तमान की समस्या है और उसका आध्यात्मिक समाधान। उसके अंदर एक चित्र बनाया था, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब की बात है, कहीं यहाँ जानते नहीं होंगे, इंदिरा गांधी के जमाने में वो चित्र बनाया हुआ था। प्रदर्शनी बॉम्बे में हुई, अहमदाबाद में हुई, पुणे में हुई, बहुत जगह पर हुई। उसके बाद वो प्रदर्शनी भोपाल गई, उसमें एक चित्र था इंदिरा गांधी ऐसे माइक पर खड़ी है और एक अखबार वाला उनसे पूछता है कि कितनी पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में राम राज्य आएगा। क्या चित्र था, प्रश्न था इंदिरा गांधी को, एक अखबार वाला पूछता है कितनी पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में राम राज्य आएगा। तो बाकी तो सब जगह पर सबने सुना देखा, क्योंकि आप जानते हैं हमारे को बाबा ने गलती किया है, मैं हमेशा कहता हूँ बाबा ये आपकी गलती है, हमको 2 कान दिए हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं उसका सदुपयोग करते हैं, एक कान से जो ज्ञान जाता है वो दूसरे कान से निकाल देते हैं। एक कान दिया होता ना तो अंदर जाता, 2 कान दिए, हंसी में कह रहा हूँ, तो इसलिए एक कान से जो ज्ञान जाता है वो दूसरे कान से निकल जाता है। आपको मालूम है ना बीरबल की 3 गुड़ियों की कहानी, उसकी कीमत क्या है, बीरबल ने एक कान में डाला पत्थर, दूसरे कान से निकल गया उसका 0 कीमत है, दूसरे के कान में डाला मुख से निकला का इसका 1 रुपया है, और तीसरे को कान में डाला उसके पेट में चला गया क्या इसकी 1 लाख रुपया कीमत है। ऐसे ही हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, हम जो भी कान सुनते हैं भूल जाते हैं क्या क्या करता है उसके लिए। तो इसके लिए क्या होता है कि वर्तमान की समस्या का ये जो चित्र जो था कितनी पंचवर्षीय योजना के बाद राम राज्य आएगा, वो भोपाल का मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन किया था, और उसने वो चित्र देखा उस समय के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, अभी तो यहाँ दूसरा है शिवराज चौहान जो है, यहाँ भी आबू में भी आया हुआ था, उस जमाने में तो दूसरा कोई था, उसने वो देखा और उसने दूसरे दिन अपनी विधानसभा के अंदर, हाँ सभी विधानसभा के अंदर ये बात कही, ये ब्रह्मा कुमारी कौन होती है जो हमसे पूछती है कि कितनी पंचवर्षीय योजना के बाद राम राज्य आएगा। अब कईयों को मालूम नहीं होगा। और मध्य प्रदेश की विधानसभा ने यूनेनिमसली ये पास किया कि ब्रह्मा कुमारी का ये चित्र निकाल दिया जाए, ये ब्रह्मा कुमारियों को हमसे पूछने का अधिकार नहीं है कि कितनी पंचवर्षीय योजना के बाद राम राज्य आएगा। और दूसरे दिन और रेजोल्यूशन के परिणाम रूप वहां का पुलिस ऑफिसर आया और हमारा वो चित्र निकाल करके लेके गया और जब्त करके निकाल दिया। कितनी पंचवर्षीय, मतलब वर्तमान की समस्याओं के ऊपर चिंतन करना चाहिए, सरकार को भी ये पूछना चाहिए क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी महाराष्ट्र की मीटिंग में नक्की हुआ कि आजकल जो है रेप आदि का, जो बलात्कार आदि का कार्यक्रम जो चलता है, जिसके बारे में भारत सरकार ने कल एक ऑर्डिनेंस भी निकाला, ये बलात्कार करने वाले को जो भी है, रेप करने वाले को, उसको आजीवन कैद। और आजीवन कैद का अर्थ इन्होंने बताया कम से कम 20 साल जेल में उसको रखना पड़ेगा, ऐसा प्रोग्राम बनाया हुआ है। इस प्रकार से वर्तमान में इस वर्तमान की समस्या है नारी जीवन की रक्षा करने का बहुत बड़ा भारी उत्तरदायित्व समाज के ऊपर है। गायत्र यत्र नार्य पूजसि पूजन्ते तत्र देवा रमन्ते, इस प्रकार से मनु ने कहा हुआ है। सब कुछ होते हुए भी आज के जमाने में, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा में ज्यादा असुरक्षित अगर हो तो हमारी बहनें, माताएं, कन्याएं हैं। तो उसी लिए हम लोगों ने वहां प्रोग्राम बनाया, जो हमने कहा बाबा को कि बाबा नारी सुरक्षा अभियान शिवरात्रि के दिनों में हम बनाएंगे, जिस पर बाबा ने कहा कि अच्छा है संगठन रूप में आवाज बढ़ा करो, इस बारी सभी सेंटर्स मिलकर के उमंग उत्साह से सेवा करो। जो टॉपिक वर्तमान समय की है, आप नोट करिए, जो टॉपिक वर्तमान समय की है उसको उठाओ। हम क्या करते हैं, चरित्र की बात करते हैं और बातें करते हैं। हाँ, वर्तमान समय में यही है, नारी जीवन के बारे में, समाज की सुरक्षा के बारे में है, इसके बारे में उठाना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि जो टॉपिक वर्तमान समय की है उसको उठाओ, जैसे सोच रहे वह अच्छा है, चारों ओर ऐसे टॉपिक रखो जो सब समझे कि यह दुनिया के वायुमंडल को ठीक ब्रह्मा कुमारियां करने चाहती है। वर्तमान की समस्याओं को दूर करने के लिए मेहनत नहीं कर, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, समाज को परिवर्तन करना हो तो समाज की समस्याओं को दूर करना पड़ेगा, और समाज की समस्याओं को दूर करना हो तो वर्तमान में समाज के सामने जो भी समस्याएं हैं, जो हॉट टॉपिक है, उसके ऊपर ब्रह्मा कुमारी बहन भाइयों को अपना ज्ञान देकर के उनको आगे बढ़ाना चाहिए और वो समस्या का समाधान देना ही चाहिए। परमात्मा बाप समस्या का समाधान नहीं देगा, परमात्मा बाप के हम मास्टर बच्चे अगर समाज को, दुनिया को समाधान नहीं देंगे तो और कौन देगा? क्या दुनिया में अन्य मनुष्यों में ताकत है कि समाज को पवित्र बनावे, श्रेष्ठ बनावे, चारित्र उनका श्रेष्ठ बनावे? है किसी में ताकत? तो हमारे में वो ताकत है, हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी वो ड्यूटी है कि हम बाबा के बच्चे मास्टर ब्रह्मा बनकर के, मास्टर ज्ञान के सागर बनकर के क्यों नहीं ऐसी सेवा करें कि जिसके आधार पर बाप का, बाबा ने जो फरमान दिया कि वर्तमान की समस्याएं जो भी है उसके, उस पर टॉपिक उठा करके उसके ऊपर सेवा करो। तो ये कार्य करना है। आज भी हम यहाँ संतोष बहन जो है महाराष्ट्र जोन के, उनके साथ बातचीत कर रहा था, इन्होंने बताया कि उन्होंने गुजरात जोन के इंचार्ज जो है सरला बहन से बात किया, तो सरला बहन भी कल आई थी, उनसे बात हुई थी उनकी। सरला बहन ने भी कहा कि संतोष बहन आप गुजरात महाराष्ट्र में क्या करने वाले हैं, ये नारी रक्षा अभियान के बारे में वो हमको बताना, तो हम भी वहां पर गुजरात में नारी रक्षा अभियान के रूप में ईश्वरीय सेवा करेंगे, कल जो बाबा ने कहा हुआ है। हमारे ब्रिजमोहन भाई ने भी कहा, इन्होंने भी हम जो कुंभ मेले के बदले में इस प्रकार से नया जो टॉपिक रखा हुआ है उसके अंदर भी नारी रक्षा के बारे में अच्छा कार्यक्रम करने का पहला भाषण उन्होंने कहा हुआ है। तो इस प्रकार से ईश्वरीय सेवा के अंदर एक नया अभिगम कि वर्तमान की समस्याएं जो भी है, समाज को अगर श्रेष्ठ बनाना है तो समाज की वर्तमान की जो भी समस्याएं है उसको दूर करने का अभिगम, उसका पुरुषार्थ हम बच्चों को करना ही पड़ेगा। और उसके लिए ही बाबा ने जो कहा, आज सुबह की अव्यक्त मुरली भी आप सबने सुनी 18 जनवरी के ऊपर थी, जिसमें कहा कि पहले तो ब्रह्मा कुमारीज का कोई निमंत्रण देने जाते थे तो लोग गेट बंद कर देते थे। अभी बाबा ने क्या कहा, आजकल ब्रह्मा कुमारियों के ऊपर सबका प्यार है। कईयों के घर में टेलीविजन आदि के द्वारा बाबा का ज्ञान सुनते हैं लोग, प्यार है। पहले जो वह कहते थे ना वो अलग बात होगी, अभी प्यार है, सेवा देख करके वृद्धि देख करके सब खुश है। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, तो इस प्रकार से हमारी सेवाएं हमारे कारोबार से जब दुनिया खुशनुमा है तो क्यों नहीं ऐसे समय पर जो समस्याएं जो है उसको दूर करने के लिए और उसके अंदर साथ बना ले हुए। जैसे हम करते हैं ना सर्वधर्म सम्मेलन, क्रिश्चियन को बुलाते मुसलमान को बुलाते सब करा करके परमात्मा कौन उसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसके इसी प्रकार से ये नारी जीवन की रक्षा के बारे में विभिन्न वर्गों के लोगों को, विभिन्न लक्ष्य के विभिन्न संप्रदाय के लोगों को बुला करके सेवा कर सकते हैं। और उसके अंदर आखिर तो बाबा का ही ज्ञान देने का है कि ये समस्या जो है उसका समाधान बाबा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है करके बाप का परिचय दे सकते हैं। इस प्रकार का सेवा का लक्ष्य बना सकते हैं। सोचना आपके ऊपर, जो हमारे कर्नाटक के भी टीचर्स बहन भाई यहाँ आए हुए हैं, 11,000 कल बताया गया, इन सबको हमारा ये अनुरोध है कि इस प्रकार से वर्तमान की समस्याओं का समाधान करने का, और उसमें भी जो आज के जमाने में आजकल जो हॉट टॉपिक है आज के भी अखबार में मैंने देखा उसके ऊपर चर्चा है और इस प्रकार से काम कारोबार चलने वाला है तो क्यों नहीं हम इसके ऊपर वर्तमान की समस्याओं को उसका समाधान करने का प्रोग्राम बनाए। एक और बात आपको करनी थी, मुझे बहुत नई बात है, आप सब तो पढ़ते होंगे अखबारों में आया हुआ है, भारत सरकार ने अभी एक नया कानून बनाया हुआ है, बहुत अच्छा कानून बना हुआ है भारत सरकार ने, जैसे कि हमारी ईश्वरीय सेवा में मदद कर सके इस प्रकार का कानून बनाया हुआ है। और उसका एक प्रोग्राम बनाया हुआ, जैसे हमने को कहा ना नारी रक्षा अभियान ये कार्यक्रम बना हुआ है, इसका प्रकाश है भारत सरकार ने कानून एक बनाया हुआ है, एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसका नाम रखा हुआ है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और कंपनीज जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, आप जानते हैं टाटा की है, रिलायंस की है, ऐसे ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर सरकार ने एक कानून बना करके जिम्मेदारी रखी हुई है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो समाज में रहकर के समाज के बहन भाइयों से ही कमाई करती है, कमाई और कहां से होगी, हम लोगों से ही कमाई होती है। दवाई की दुकान जो है दवाई की चीज बनाती है, जो भी 100 रुपए की चीज होगी 110 रुपए 15 में बेच करके 10-15 रुपए का जो भी प्रॉफिट करते होंगे समाज से ही प्रॉफिट करती है। तो इसलिए सरकार ने नक्की किया कि जिस समाज से आपने कमाई किया हुआ है, इस समाज का उत्कर्ष करने के लिए, उत्थान करने के लिए आपको आपका जो भी प्रॉफिट होगा, इन्होंने नक्की किया है कि जिस भी कंपनी का प्रॉफिट साल का 5 करोड़ से अधिक हो वो अपना प्रॉफिट का 2% खर्च समाज के उत्थान के लिए, जिसको अंग्रेजी में कहा है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात बड़ी बड़ी कंपनियों का सामाजिक जिम्मेदारी उठा करके उसमें सहयोग देने का कार्य करने का इनके ऊपर जिम्मेदारी रखी हुई है 2%। आप समझेंगे 2% क्या होता है, परंतु आपको मालूम नहीं है 2% के हिसाब से साल का होता है 6,750 करोड़ रुपया 6,750 750 करोड़ रुपए का सरकार ने जिम्मेदारी का बोझ बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन के ऊपर डाला हुआ है और उनको कहा कि आप इस प्रकार से 9-10 चीजें रखी हुई है जिसमें एक आता है नारी जीवन का उत्थान करना, समाज का उत्थान करना, एजुकेशन बढ़ाना, हम गरीब जो है उनको उत्थान करना, ऐसी ऐसी 10 चीजें है। वो हमने सर्कुलर बना करके मधुबन से भेजा हुआ है, हम तीन भाइयों की मीटिंग में उसको पास किया है, दादी जानकी ने भी उसको मंजूर किया है। तो उस प्रकार से ये एक बहुत बड़ी भारी सरकार के तरफ से गिफ्ट मिली हुई है। 2% के हिसाब से 6,750 करोड़ रुपए में से 1% भी हमको ईश्वरीय सेवा में मिल जाए तो 67 करोड़ हो सकता है, बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, तो छोटा अमाउंट नहीं है, परंतु काम करने वाले चाहिए। मैं हमेशा ही कहता हूँ, कल भी हमारा गोलो भाई विदेश की यात्रा करके आया हुआ था, एक जर्मनी का भाई भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के पास जाकर के 15 करोड़ रुपए का ग्रांट स्वीकार करा सकता है। विदेश का भाई भारत के अंदर 15 करोड़ का भारत सरकार से ग्रांट सेंक्शन करा सकता है। हमारे आज तक के जितने भी बहन भाई हैं दैवी परिवार के, इस भारत के नागरिक जो भी है, इन्होंने 15 करोड़ रुपए का ग्रांट सरकार से लाने का प्रयत्न में सफल नहीं हुए हैं। अब ये सरकार के पास नहीं, ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन के पास ये है, उनके पास ये लक्ष्य है, उनको खर्च करना है, उनके पास जाकर के कहे कि आपको अभी 2% खर्च करना है तो हमारे पास ये प्रोग्राम है, ऐसा हमारा प्रोग्राम है, नारी सुरक्षा है या और कोई जो भी ऐसे अच्छे एजुकेशन के आदि का प्रोग्राम बना करके कहे, उनको कहे कि आपको ये करना ही है तो हम आपको ये साथ दे रहे और कर सकते हैं। हमारे भारत के अंदर कई सेवा केंद्र की बहन भाई मेहनत करते हैं। आपको मालूम होगा हर एक एमपी को हर साल 5 करोड़ रुपया अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेवा करने के लिए, खर्च करने के लिए छुट्टी दी हुई है। आपको मालूम नहीं है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ऐसी उनके एमपी दादी की सेवा करने से एक सेवा केंद्र को एक एमपी ने कहा है, मैं आपके सेवा केंद्र का मकान बनाने में 50 लाख की मदद कर सकता हूं। सेवा करने से रिजल्ट मिलती ही है। एमपी के पास 5 करोड़ रुपया है, ऐसे हर एक एमएलए के पास भी ऐसे पैसे है, हर एक के पास ऐसा है। अभी ये कॉरपोरेशन के पास 2% का सरप्लस है। अगर हम लक्ष्य रखें और उनकी सेवा करें तो इस प्रकार से इन पॉलिटिशियंस, इन नेताओं का और इस प्रकार से कंपनियों के बड़े बड़े उसके सेवा करने से लक्ष्य रखें तो बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती है। अभी सेवा के फील्ड में हम इनों का धर्म को सफल करने के लिए भी कार्यक्रम बना सकते हैं और इसके लिए हमने सभी मधुबन से सभी जोन इंचार्ज को पत्र लिखा हुआ है कि आपके पास ऐसा कोई कार्यक्रम हो आप ऐसा प्रोग्राम मधुबन में भेजिए, हम मधुबन से हम तीन भाई उसको सेंक्शन करके आपको आगे का मार्गदर्शन दे सकेंगे। इस प्रकार का ये प्रोग्राम बना हुआ है तो ये भी एक सेवा का लक्ष्य है। और जो जल्दी जितना जल्दी इन कॉरपोरेशन के पास जाकर के सेवा कराएंगे तो उसके बाद उनका संबंध बन जाएगा, तो उसके बाद संबंध के आधार पर सेवा का कार्यक्रम अच्छी रीत से हो सकता है। तो ये चैलेंज है, इसलिए मैंने कहा ना कि वर्तमान समय में हमको भी बाबा के माफी बाबा कहते हैं जागती ज्योत बनाओ, अर्थात हम वर्तमान की समस्याओं को, वर्तमान के साधनों का, इन सब बातों का उपयोग करिए। कॉरपोरेशन के द्वारा, एमपीस के आदि के द्वारा हमारे पास फंड्स के रूप में बहुत कुछ सेवाएं हो सकती है और हम उनके धन को सफल बनाने का कार्यक्रम कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। अगर इस प्रकार से ये नई सेवाओं को स्वीकार करें, उसकी चैलेंजेस को स्वीकार करें और हम अपने दिल दिमाग को खुला रख करके बाकी सब बातों को भूल जाए, भूल करके पुरानी बातों को भूल करके अपने पुरुषार्थ के अंदर चार चार लगावे, तो मैं समझता हूँ इस वर्ष की शिवरात्रि और शिवरात्रि के बाद आने वाला समय जो है उसको हम बहुत अच्छी रीत से ईश्वरीय सेवा में हमारा समय, हमारा पुरुषार्थ सफल कर सकते हैं। हमारे हाथों में, हमने उन्हें जो योग की प्रदर्शनी बनाई थी उसके अंदर लास्ट चित्र जो है ना उसके ऊपर वो चित्र बनाने के लिए हमने ब्रह्मा बाबा को लिखा था, मैंने कई बार कहा है। तो ब्रह्मा बाबा ने वो चित्र बना करके दिखा भेजा कि पृथ्वी डेथ बेड पर है, उसके ऊपर अनुबम्स आत्मबम्स गिरने वाले हैं। सन्यासी कहता है कि अभी तो कलयुग बच्चा है, 40,000 वर्ष ही हुआ है, अभी तो और लाखों वर्ष व्यतीत करना है और विनाश का पृथ्वी जो है मृत्यु सैया पर है, वो चित्र बनाया था। और उसके हाथ और नीचे में बाबा ने लिखत बना करके भेजी थी, बहुत सुंदर। मैंने वो अपना जीवन लक्ष्य बना दिया है। उसमें लिखा था बाबा ने कि आपका भविष्य आपके हाथों में है, आपका भविष्य आपके हाथों में है, आपका भविष्य न और कोई बना सकता है न और कोई बिगाड़ सकता है। बिगाड़ सकता है न कोई बना सकता है न बिगाड़ सकता। शिव बाबा कहते हैं मैं भी आपका भविष्य न बना सकता हूँ न बिगाड़ सकता, आपको ज्ञान दे सकता हूँ, पुरुषार्थ तो फिर भी आपको ही करना पड़ेगा, तो इसलिए आप पुरुषार्थ कीजिए। मैं एक मार्गदर्शन दे सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ, विधि सिखा सकता हूँ, परंतु पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा। अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, यू कैन टेक हॉर्स टू द रिवर बट यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर ऑन बिहाफ ऑफ योर हॉर्स, हॉर्स मस्ट ड्रिंक वाटर। घोड़ा जो होता है घोड़े को आप नदी किनारे लेके जाओ पानी पिलाने के लिए, तो क्या है आप पानी पिएंगे तो आपके घोड़े के पेट में पानी नहीं जाएगा, आपके घोड़े को खुद को ही पानी पीना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारा भविष्य हमारा भाग्य हम ही बना सकते हैं। तो इसलिए आज जो बाबा ने जो कहा 21 जन्मों का भाग्य बनाने का चांस इसी संगम पर है, इस सावधानी को स्वीकार कर करके, इस चुनौती को स्वीकार कर करके, इस सावधानी को स्वीकार कर करके हम क्यों नहीं पुरुषार्थ करें और 21 जन्मों का श्रेष्ठ पुरुषार्थ श्रेष्ठ भाग्य हम बनावे। ऐसा अगर करेंगे तब क्या होगा, कल की मुरली का वास्तविकता और वास्तविकता के आधार पर उसके आधार पर जो भी पुरुषार्थ होगा वो हम सफल कर सकेंगे। और अंत में मैं तो यही कहूंगा आप सबको, हम सब ऐसा पुरुषार्थ करें कि हमारा भविष्य हम सफल कर सकें। और यही प्रेरणा यही बाप दादा से वरदान आप हम सबको मिले, यही शुभ भावना। और इस प्रकार से कल बाबा ने जो कहा करीब 2 घंटे में मुरली के अंदर ये सारी बातें जो कही सार के रूप में मैंने आपको बताई, उसके ऊपर आप सब सोचना और इसके आधार पर वर्तमान की समस्याओं को दूर करने के लिए अच्छे में अच्छा शिवरात्रि का प्रोग्राम बना करके अच्छे में अच्छा शिवरात्रि के फल स्वरूप सेवा का विस्तार बढ़ाइए। बाबा ने जो कहा वारिस क्वालिटी को बनाइए, इस प्रकार का सफलता आप हम सबको मिले, यही शुभेच्छा। ओम शांति।
अब तक हम सबने आदरणीय रमेश भाई जी की अमृतवाणी सुनी। कहा जाता है बात बात में बात, वैसे ही भाई जी ने ज्ञान सागर बाबा के अव्यक्त वाणी की बातों को सूक्ष्माति सूक्ष्म बातों को गहराई से हमारे सामने स्पष्ट प्रस्तुत किए और ज्ञान योग और सेवा की विविधता को समझाए, धारणा की डेप्थ को समझाए और अंत में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उस पर हम प्रोग्राम बनाए कार्यक्रम करें। ऐसे मार्ग दर्शाने वाले आदर्श आदरणीय रमेश भाई जी का हम सब मिलकर के तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, शत शत अभिनंदन कहेंगे, धन्यवाद करेंगे। ओम शांति।